हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 391। उन सब लोगों के वहां से चले जाने के बाद आदित्य ने स्वीटी से दरवाजा बंद करके आने के लिए कहा, और जैसे ही स्वीटी दरवाजा बंद करके वहां पर वापस आई, वैसे ही आदित्य ने स्वीटी से सुनैना के बारे में पूछा। तुम्हारी भाभी कहाँ है स्वीटी, और इन लोगों से ज्यादा कुछ उसकी बात बहस तो नहीं हुई ना? स्वीटी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, भाभी अपने रूम में ही है। भाभी से भी इन लोगों की थोड़ी बहस हो गई थी, लेकिन भाभी ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकी, और अपने मम्मी पापा को यहाँ पर देखकर वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब लग रही थी, शायद जितना मैंने नोटिस किया। आदित्य ने बहुत ही ध्यान से स्वीटी की बात सुनी और बोला, हाँ वो उसकी मम्मी नहीं, उसकी स्टेप मॉम है, जो कभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, और सुनैना अपने मम्मी पापा के बिहेवियर से बहुत ज्यादा हर्ट रहती थी शादी से पहले, जितना मुझे पता है, और इसीलिए वो अभी भी उन्हें माफ नहीं कर पाई है, शायद कभी कर भी नहीं पाएगी। लेकिन वो लोग आज इस तरह से सामने आ गए, शायद इसलिए। आदित्य ने ये बात बोली तो स्वीटी ने उसकी बात सुनकर थोड़ा सा आगे आते हुए आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर कहा, माँ बाप की शादी तक निराश कर सकते हैं, ये बात मैं भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ भाई, और शायद इसीलिए भाभी ने उस तरह से रिएक्ट किया। अपने मम्मी पापा की हरकतें याद करते हुए स्वीटी ने काफी ज्यादा दुखी होते हुए कहा, तो आदित्य ने हल्के से अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, और स्वीटी की बात सुनकर आदित्य ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया, और फिर वहां से सीधे अपने रूम की तरफ पर ही बढ़ गया। वहीं स्वीटी को अपने मम्मी पापा के लिए थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं पता है कि वो लोग ऐसा ही बर्ताव डिजर्व करते हैं, इसलिए स्वीटी ने आदित्य से कुछ भी नहीं कहा, और उसके जाने के बाद खुद भी सीधा वापस अपने कमरे में आ गई, और उसे कम से कम इस बात की ही तसल्ली है कि अभी उसे अपना कोर्स अधूरा छोड़कर वापस अपने घर नहीं जाना पड़ा, और आदित्य उसे इतना सपोर्ट कर रहा है। आदित्य रूम के अंदर आया तो उसने देखा कि सुनैना स्टडी टेबल के पास वाली चेयर पर अपनी बुक खोलकर बैठी हुई है, और वो पढ़ रही है, क्योंकि उसके एग्जाम एकदम सर पर है, लेकिन साथ ही इस वक्त वो अपना सिर पकड़कर बैठी हुई है, शायद कुछ सोचने की वजह से उसके सर में दर्द हो रहा है। और आदित्य बहुत ही चुपके दबे पांव कर कमरे के अंदर आया, क्योंकि रूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। आदित्य बहुत ही चुपके से अंदर आया और सुनैना अपने ही ख्यालों में कहीं खोई है, इसलिए उसे इस बात का पता ही नहीं चला जब तक उसे किसी का टच अपनी गर्दन पर फील नहीं हुआ। वहीं आदित्य कमरे के अंदर आता हुआ सुनैना की कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया, और हल्का सा झुककर उसने पीछे से ही सुनैना की गर्दन में हाथ डालते हुए खुद को उसके एकदम करीब किया, और अपने चेहरे को उसके कंधे पर रख दिया। आदित्य के इस तरह पीछे से आकर ऐसा करने से सुनैना एक पल के लिए तो चौंक गई, क्योंकि वो इस वक्त किसी और बात को लेकर सोच रही थी, लेकिन फिर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो कोई और नहीं आदित्य है, तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, और उसने कहा, चले गए वो सब लोग, वो सारे बिन बुलाए मेहमान जो बिना बुलाए हमारे घर में भी आ जाते हैं और हमारी जिंदगी में भी। उसकी इस बात का जवाब देते हुए आदित्य बोला, हाँ चले गए, लेकिन तुम उन लोगों के बारे में क्यों सोच रही हो? तुम पढ़ाई करो ना, क्योंकि जब तक मैं हूँ कोई भी हमारी इजाज़त के बिना हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। इतना बोलते हुए अपना चेहरा सुनैना के चेहरे के एकदम नज़दीक करते हुए आदित्य ने पीछे से ही सुनैना की गर्दन पर किस किया, और उसके किस करते ही सुनैना की आँख बंद हो गई, और अपना सिर थोड़ा सा पीछे करते हुए सुनैना ने अपना चेहरा आदित्य के चेहरे के नज़दीक कर लिया, और उसके मुँह से एक मीठी सिसकारी निकली।
हाँ आदि, क्या क्या कर रहे हो?
सुनैना हमेशा ही आदित्य के टच से इतना ज्यादा सेंसिटिव फील करती है, और उसे इस तरह से टर्न ऑन होते देखकर आदित्य ने फिर से उसके शोल्डर और नेक पर किस करते हुए कहा,
अरे मैं तो बस तुम्हारा स्ट्रेस दूर कर रहा हूँ, एंड आई थिंक इट्स वर्किंग।
इतना बोलते हुए आदित्य शरारत से मुस्कुराया, और आगे बढ़कर उसने सुनैना की लेफ्ट चीक पर किस कर लिया। सुनैना का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया आदित्य की ये बात सुनकर। उसने आदित्य को हल्के से पीछे खुद से दूर पुश करते हुए कहा, स्टॉप इट आदित्य, आई एम नॉट स्ट्रेस्ड, वो तो बस उन लोगों को इस वक्त यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, और अभी पढ़ने दो तुम मुझे, चले गए हैं ना वो लोग, हाँ तो पढ़ो ना, मैंने कब मना किया है, और क्यों सोच रही हो तुम उन लोगों के बारे में, मैं हूँ ना, निपट लूंगा उन लोगों से। आदित्य ने इस बार सुनैना के राइट चीक पर किस करते हुए कहा, और फिर उसकी चेयर को अपनी तरफ ही घुमा दिया, और खुद बेड किनारे पर बैठ गया। बेड के किनारे पर बैठते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाकर आदित्य ने सुनैना को चेयर समेत अपनी तरफ से ही खींच लिया, तो उसके ऐसा करने पर सुनैना थोड़ा सा हड़बड़ा गई, बोली, आदि मैं गिर जाऊंगी। सुनैना की बात बीच में ही काटते हुए आदित्य उसकी आंखों में देखा हुआ बोला, मेरे रहते तो ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें लगता है क्या कि मैं कभी भी तुम्हें गिरने दूंगा? आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, तो सुनैना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, और उसने कहा, आई नो दिस माई लव, यू आर ऑलवेज विद मी। इतना बोलते हुए सुनैना कुर्सी से उठी और उसने आदित्य को कसकर गले लगा लिया। उसके इस तरह से गले लगाने पर आदित्य को बहुत ही अच्छा लगा, और उसने भी सुनैना की पीठ पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कसकर उसे अपने और करीब कर लिया,
जिससे कि सुनैना उसकी गोद में बैठ गई। कुछ देर तक वो दोनों इस तरह से बैठे रहे, लेकिन फिर कुछ याद आते ही सुनैना उससे दूर हो गई और अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ मासूमियत से देखने लगी। उसके इस तरह देखने पर आदित्य समझ गया कि वो जरूर कुछ तो शिकायत करने वाली है, और तभी सुनैना ने उसके चेस्ट पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, हमेशा हो मेरे साथ, लेकिन आज मेरे साथ घर वापस क्यों नहीं आए तुम? आदि, पता है मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो सब ऐसे एक साथ जमा होकर घर में बैठे होंगे, और फिर उन लोगों से मेरी बहस भी हो गई, इसलिए अब मेरा सिर में दर्द हो रहा है। सुनैना ने मुंह बनाकर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे शिकायत की, तो आदित्य ने उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसकी आंखों में देखकर बोला, क्यों क्यों सोच रही हो इन सब के बारे में इतना? मैंने तुमसे कहा ना, वो लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस मत दो। और रही खुद को जरा सी भी तकलीफ? आदित्य की इस बात पर सुनैना ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और आदित्य के चेस्ट पर ही अपना सिर रखकर आंखें बंद कर लें। सुनैना को इस तरह से देखकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आदित्य ने उससे कहा, सिर में दर्द हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए सो जाओ, फिर जब आंख खुले और दर्द कम हो तब उठकर पढ़ लेना, ओके? अभी सुनैना का भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने भी पढ़ने के लिए जिद नहीं किया और आदित्य की बात सुनकर वो अपना सिर उठाते हुए उससे थोड़ा सा दूर हटी। उसे उठते देखकर आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बिठाया और फिर बिना कुछ बोले ही हल्के से पीछे पुश करते हुए आदित्य ने उसे बेड पर लिटा दिया। सुनैना ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप से बेड पर लेट गई, लेकिन अभी बेड पर लेटे हुए भी वो अपने सामने बैठे आदित्य की तरफ देख रही है। और तभी सुनैना ने कुछ सोचते हुए उससे पूछा, तुम कहाँ गए थे आदित्य? मुझे ठीक से बताकर भी नहीं गए और मुझे तुम्हारी भी टेंशन हो रही थी।
सुनैना के सवाल पर आदित्य को भी जैसे एकदम से कुछ याद आया और वो सब कुछ याद करके उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम ही बदल गए। बात को टालते हुए आदित्य ने कहा, अरे वो मैं बस ऐसे ही, और बताकर तो गया था मैं तुम्हें। हाँ, वो मैं अनय से मिलने के लिए गया था। आदित्य को बस अभी याद आया कि वहाँ ऑफिस से जाते वक्त भी वो सुनैना को अनय का नाम ही बताकर गया था, और इस तरह से उसने झूठ भी नहीं बोला क्योंकि अनय ने उसे वहाँ पर आने के लिए कॉल किया था। इसके अलावा आदित्य नहीं चाहता कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे बारे में सुनैना को पता चले, क्योंकि जिस तरह से वो अभी इतने सवाल कर रही है, वो पता चलने के बाद वो उसे बारे में और भी ज्यादा टेंशन लेगी। सुनैना ने उसके इस बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ मुझे पता है तुम अनय से मिलने गए थे, लेकिन किस लिए, क्यों और कहाँ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? सुनैना के सवाल पर आदित्य ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है आखिर? इस पर सुनैना ने अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहा, अरे नहीं, प्रॉब्लम से मेरा मतलब है वो ठीक तो है ना अनय, और उसकी वाइफ, उसने कुछ किया है क्या? सुनैना ने फिर से थोड़ा बहुत सोचते हुए इधर उधर के सवाल किए, क्योंकि असल में वो पूरी बात जानना चाहती है। सुनैना के इतने सारे सवाल सुनकर आदित्य ने उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, क्यों इतना प्रेशर डाल रही हो यहाँ पर, मैंने कहा ना चुपचाप सो जाओ, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अनय को, वो ठीक है, और वैसे भी क्या वो मुझे ऐसे ही मिलने के लिए नहीं बुला सकता, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? इतना बोलते हुए आदित्य ने बेड पर रखी हुई ब्लैंकेट खींचकर सुनैना को ओढ़ा दी और खुद भी उसके साइड में ही वहां पर लेट गया। तो सुनैना ने उसके हाथ को खींचकर अपने सिर के नीचे रख लिया और खुद उसके नजदीक आ गई। आदित्य के करीब आकर सुनैना उसकी चेस्ट पर अपना सिर रखते हुए बोली, आदि ये बेस्ट फ्रेंड होना बहुत ही स्पेशल होता है ना, बट मेरा कभी कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा, और तुम्हें पता है मैं नैना दी को ही अपनी दोस्त, बहन, बेस्ट फ्रेंड सब कुछ मानती आई हूँ, लेकिन अभी मैं कितने टाइम से तो उनसे भी नहीं मिली। इतना बोलते हुए सुनैना की आवाज बहुत ही ज्यादा उदास लग रही है। अच्छा तो तुम्हें नैना की याद आ रही है क्या, कॉल करके बात कर लो, आदित्य सुनैना की तरफ देखते हुए कहा। तो सुनैना बोली, अरे कॉल पर बात तो होती रहती है, लेकिन मिलने की बात अलग है, बट मुझे पता है कि वो भी अपने काम में बिजी रहती है, बस इसीलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और मिलने के लिए नहीं बुलाती, बट आई होप कि नैना दी और अक्षत सर के बीच सब ठीक हो, उन दोनों के काम और बिजी शेड्यूल का असर उनकी पर्सनल लाइफ पर ना पड़े, कितने अच्छे लगते हैं ना वो दोनों साथ में। सुनैना ने तो अनजाने में ही ये बात बोली, लेकिन उसकी बात सुनकर आदित्य ने जैसे चौंकते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा, सोना तुम अचानक से ये बात क्यों बोल रही हो, सब ठीक ही होगा उनके बीच, और तुम्हें कुछ ना कुछ सोचकर टेंशन लेना जरूरी होता है क्या? क्रमशः